ये हफ्तावार बाइबल का दसवां प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 25 नवंबर 2021 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुताले की गर्ज से तैयार किया गया है। मजमून शुक्रगुजारी, सुनहरी मतन फिल्पियों। खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूं कि खुश रहो। जवाबी मुतालिया फिल्पियों। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यसु में महफूज रखेगा। गर्ज ऐ भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं उन पर गौर किया करो। मैं खुदावंद में बहुत खुश हूँ, ये नहीं कि मैं मोहताजी के लिहाज से कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस हालत में हूँ उसी में राजी रहूँ। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। दरसीवाज बाइबल में से जबूर। खुदावंद ही मेरी मेरास और मेरे प्याले का हिस्सा है, तू मेरे बखरे का मुहाफिज है। जरीब मेरे लिए दिल पसंद जगहों में पड़ी, बल्कि मेरी मेरास खूब है। मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है, चूंकि वो मेरे दाहिने हाथ है इसलिए मुझे जुम्बश ना होगी। इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है, मेरा जिस्म भी अमन अमान में रहेगा। तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हजूर में कामिल शादमानी है, तेरे दहरे हाथ में दायमी खुशी है। यसाया, तुम मेरी इस नई नस्ल से अबदी खुशी और शादमानी करो, क्योंकि देखो मैं यरूशलम को खुशी और उसके लोगों को खुरमी बनाऊंगा, और मैं यरूशलम से खुश और अपने लोगों से मसरूर होऊंगा, और उसमें रोने की सदा और नाले की आवाज़ फिर कभी ना देगी। उनकी मेहनत बेसबूद ना होगी और उनकी औलाद नागहान हलाक ना होगी, क्योंकि वो अपनी औलाद समेत खुदावंद के मुबारक लोगों की नस्ल हैं। और यूं होगा कि मैं उनके पुकारने से पहले जवाब दूंगा और वो हनूज कह ना चुकेंगे कि मैं सुन लूंगा। अमाल। हमें एक लौंडी मिली जिसमें गैबदान रूह थी। वो गैब गोई से अपने मालकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। वो पौलुस के और हमारे पीछे आई। आखिर पौलुस सख्त रंजीदा हुआ और फिर कर उस रूह से कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ कि उसमें से निकल जा। वो उसी घड़ी निकल गई। जब उसके मालकों ने देखा कि हमारी कमाई की उम्मीद जाती रही, तो पौलुस और सैलास को पकड़ कर ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकमों के पास ले जाकर कहा कि ये आदमी जो यहूदी हैं हमारे शहर में बड़ी खलबली डालते हैं। और फौजदारी के हाकमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और बिनत लगाने का हुक्म दिया, और बहुत से बिनत लगवा कर उन्हें कैद खाना में डाला और दारोगा को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी निगेबानी करे। आधी रात के करीब पौलुस और सैलास दुआ कर रहे थे और खुदा की हमद की गीत गा रहे थे, और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा पौंचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाने की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियाँ खुल गईं। और दारोगा जाग उठा और कैद खाने का दरवाज़ा खुला देखकर समझा कि कैदी भाग गए, बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। लेकिन पौलुस ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा कि अपने तई नुकसान ना पहुँचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। वो चिराग मंगवा कर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पौलुस और सैलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, ऐ साहिबो मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? उन्होंने कहा कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदा का कलाम सुनाया, और उसने उसी वक्त अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया और अपने सारे घराने समेत खुदा पर ईमान लाकर बड़ी खुशी की। तसलिंकियों, तुम सब नूट के फर्जंद और दिन के फर्जंद हो, हम ना रात के हैं ना तारीकी के। बस औरों की तरह सो ना रहें, बल्कि जागते और होशियार रहें। हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, सब बातों को आजमाओ, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल तुम पर होता रहे, आमीन। अब मैं मेरी बेकर रेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। मसीही लोग मख्फी खूबसूरती और फजल से शादमान होते हैं, जो दुनिया से पोशीदा मगर खुदा से अयां होता है। खुद फरामोशी, पाकिजगी और एहसास मुसलसल दुआएं हैं। मश्क ना के पेशा, फहम ना के ईमान, कादर मुतलिक के कान और दस्ते रास्त हासिल करते हैं, और बिलाशुबा ये बे इंतहा नेमतें निछावर करवाते हैं। खुदा मोहब्बत है, क्या हम इससे ज्यादा उससे तवक्कु कर सकते हैं? खुदा जहानत है, क्या हम उस लामतना ही अकल को इससे आगाह कर सकते हैं जो वो पहले से ना जानता हो? क्या हम कामलियत को तब्दील करने की तवक्कु करते हैं? क्या हमें किसी फवारे के सामने और इल्तजा करनी चाहिए जो हमारी तवक्कु से ज्यादा पानी उंडेल रहा हो? अन कही ख्वाहिश हमें तमाम वजूदियत और फजल के मंबा के करीब तर ले जाती है। जो भलाई हम पहले ही हासिल कर चुके हैं, क्या हम वाकई उसके लिए शुक्रगुजार हैं? फिर हम खुद को इन बरकात के लिए दस्तियाब करेंगे और यूं मजीद पाने के मुस्तहिक ठहरेंगे। शुक्रगुजारी शुक्रिया अदा करने के लफ्जी इजहार की नस्बत ज्यादा अहमियत की हामिल है। अल्फाज की नस्बत अमल ज्यादा शुक्रगुजारी को जाहिर करता है। अगर हम जिंदगी, हक और मोहब्बत के लिए ना शुक्रगुजार हैं और फिर भी तमाम तर नियमतों के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, तो हम मुनाफिक और उस शदीद मलामत को अपने ऊपर लेते हैं जो मालिक रियाकारों के लिए बयान करता है। ऐसी सूरत में सिर्फ एक दुआ काबिल कबूल है कि अपने होंठों पर उंगली रख कर हमारी नियमतों को याद किया जाए। जब दिल इलाही सच्चाई और मोहब्बत से कोसों दूर हो, तो हम बंजर जिंदगियों की नाशुक्री को छुपा नहीं सकते। कौन है जिसने इंसानी अमन के नुकसान को महसूस किया और रूहानी खुशी के लिए शदीद ख्वाहिशात हासिल नहीं की? आसमानी अच्छाई के बाद इत्मीनान हासिल होता है, हत्ता कि इससे कबल के हम वो दरियाफ्त करते जो अकल और मोहब्बत से ताल्लुक रखता है। जमीनी उम्मीदों और खुशियों का नुकसान बहुत से दिलों की चढ़ने वाली राह रोशन करती है। फहम की तकलीफें हमें बताती हैं कि इदराक की खुशियाँ फानी हैं और वो खुशी रूहानी है। मोअज़्ज़ज़ क़ारीन, इस पर गौर करें, क्योंकि ये आपकी आंखों पर से पर्दा हटा देगा और आप एक नरम परों वाली फाख्ता को अपने ऊपर उतरता देखेंगे, बल्कि वही सूरत हाल जिसे आपकी दुख सहने की इस गजबनाक और तकलीफ दे समझती है। मोहब्बत किसी फरिश्ते के जरिए उसे आपके लिए गैर मुतलका बना सकती है। ये मादी फहम के चीज़ों की बुनियाद पर कायम जहालत और झूठा अकीदा है जो रूहानी खूबसूरती और अच्छाई को छुपाता है। ये क्रिश्चियन साइंस का अकीदा है कि इलाही मोहब्बत अपने इजहार या मौजू से आरी नहीं हो सकती, कि खुशी गम में तब्दील नहीं हो सकती क्योंकि गमी खुशी की मालिक नहीं है, कि अच्छाई बदी को कभी पैदा नहीं कर सकती, कि मादा कभी अकल को पैदा नहीं कर सकता, ना ही जिंदगी कभी मौत का नतीजा मौत हो सकती है। कामिल इंसान खुदा यानी अपने कामिल रसूल के मातहत गुनाह से पाक और अबदी है। हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि जिंदगी खुद परवर है और हमें रूह की अबदी हमांगी से मुनकर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बज़ाहर फ़ानी एहसासात में इख्तलाफ हैं। ये खुदा इलाही असूल से हमारी नावाकफियत है जो ज़ाहरी इख्तलाफ को जन्म देती है और इससे मुतलक बेहतर सोच हमांगी को बहाल करती है। सच्चाई तफसील में हमें मजबूर करेगी कि हम सब खुशियों और दुखों के फहम का जिंदगी की खुशियों के साथ तबादला करें। مادے کے دعووں سے انکار خوشی کی روح کی جانب، انسانی آزادی اور بدن پر آخری فتح کی جانب بڑا قدم ہے۔ آسمان پر جانے کا واحد راستہ ہم آہنگی ہے، اور مسیح الہی سائنس میں ہمیں یہ راستہ دکھاتا ہے۔ اس کا مطلب خدا، اچھائی اور اس کے عکس کے علاوہ کسی اور حقیقت کو نہ جاننا، زندگی کے کسی اور ضمیر کو نہ جاننا، اور نام نہاد درد اور خوشی کے احساسات سے برتر ہونا ہے۔ صبر، حلیمی، محبت اور نیک کاموں میں ظاہر ہونے والے فضل میں ترقی کرنے کی پرجوش خواہش کے لیے ہمیں سب سے زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے استاد کے حکموں پر عمل کرنا اور اس کے نمونے کی پیروی کرنا ہم پر اس کا مناسب قرض ہے، اور جو کچھ اس نے کیا ہے اس کی شکر گزاری کا واحد موضوع ثبوت ہے۔ ہم الہی فطرت کو سمجھنے اور جسمانیت پر مزید جنگ نہ کرتے ہوئے، بلکہ ہمارے خدا کی بہتات سے شادمانی کرتے ہوئے، سمجھ کے ساتھ اس سے پیار کرنے کے تناسب میں اس کی فرما برداری اور عبادت کریں گے۔ چونکہ انسانی سوچ شعوری درد اور بے آرامی، خوشی اور غمی، خوف سے امید اور ایمان سے فہم کے ایک مرحلے سے دوسرے میں تبدیل ہوتی رہتی ہے، اس لیے ظاہری اظہار بالآخر انسان پر جان کی حکمرانی ہوگا، نہ کہ مادی فہم کی حکمرانی ہوگا۔ ہمارے لیے زندگی میں جدت لاتی محسوس کرتے ہوئے اور کسی فانی یا مادی طاقت کو تباہی لانے کے قابل نہ سمجھتے ہوئے، آئیے روح کی قوت کو محسوس کریں۔ تو آئیں ہم شادمان ہوں کہ ہم ہونے والی الہی قوتوں کے تابع ہیں۔ اب میں میری بیکر ریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی سیدھی سائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے، اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔